नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंशवादी दलों का डर ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध का कारण है। कृषि विभाग ने राज्य में दलहन उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख टन से अधिक करने का निर्णय किया। राज्य के 29 जिलों के 363 पैक्सों में अध्यक्ष और प्रबंध समिति के चयन के लिए कल मतदान होगा। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के कई स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इसके गठबंधन सहयोगियों ने महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप किया है, उसका दंड उन्हें अवश्य ही मिलेगा। विपक्ष ने संसद और राज्य विधानसभाओं में नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया और उसे पास नहीं होने दिया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कल कहा कि उनकी सरकार महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करेगी। जो दल महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वे देश की महिलाओं की संसद और राज्य विधानसभाओं में बढ़ती भागीदारी को रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने संकल्प पर अडिग है।
संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताया और कहा कि सरकार के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, जिसके लिए वह सभी माताओं और बहनों से क्षमा मांगते हैं। प्रधानमंत्री ने इस व्यवहार को महिलाओं की गरिमा और आत्मसम्मान पर आघात बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति बंधन संशोधन समय की मांग है और यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सहित सभी क्षेत्रों में संतुलित सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का एक प्रयास था।
सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने यह अफवाह फैलाई कि परिसीमन प्रक्रिया से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, लेकिन उनकी सरकार ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी राज्य की हिस्सेदारी कम नहीं होगी और राज्यों में सीटें अनुपातिक रूप से बढ़ेंगी, जिससे प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं आएगी। श्री मोदी ने कहा कि इस विधेयक का विरोध करके कांग्रेस ने खुद को सुधार विरोधी दल साबित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से हर सुधार पर निष्क्रिय रुख अपनाती रही है और उनकी कार्य संस्कृति में विलंब करना, ध्यान भटकाना और बाधा डालना शामिल है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कृषि सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अग्रिम रूप से करने का निर्देश भी दिया। इधर श्री चौहान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त काम उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसी भी श्रमिक को रोजगार के लिए इंतजार न करना पड़े। कृषि विभाग ने राज्य में दलहन उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 11 लाख टन से अधिक करने का निर्णय लिया है। विभाग ने अगले 5 वर्षों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योजना बनाई है। विभाग के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा दलहन प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत मिले 100 करोड़ रुपए की राशि से पटना विश्वविद्यालय में G+7 भवन और इक्यूवेशन रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी प्रोफेसर खगेंद्र कुमार ने बताया कि भवन के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर पटना विश्वविद्यालय में डिजिटल स्टूडियो छात्रों के लिए खुल गया है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि छात्रों को अब घर पर ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने शिक्षकों के व्याख्यान देखने को मिलेंगे, साथ ही छात्र देश विदेश के विशेषज्ञों से लाइव जुड़ भी सकेंगे। दानापुर मंडल के नेउरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलगाड़ियों के परिचालन में 26 अप्रैल तक बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस अवधि के दौरान 7 रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं, जबकि 10 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 रेलगाड़ियों का आंशिक समापन किया गया है और 15 रेलगाड़ियों को पुनर्निर्धारित तथा 21 रेलगाड़ियों की गति सीमा को नियंत्रित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई EOU करेगी। आयोग के अनुसार मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय दल की SIT गठित की गई है। EOU के ADG ने बताया कि EOU के SP राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित जांच दल में 1 DSP और 5 इंस्पेक्टर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गठित SIT के कार्यों की समीक्षा DIG मानवजीत सिंह ढिल्लन करेंगे। वहीं नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित एक परीक्षा केंद्र से पुलिस ने AEDO परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में 1 अभ्यर्थी और बायोमेट्रिक जांच करने वाली एजेंसी के 2 तकनीकी कर्मियों को गिरफ्तार किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पछुआ हवा के कारण राज्य के कई हिस्सों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अधिकतम पारा 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज से राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर लू चलने की संभावना है।
24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लू और गर्मी से बचने के लिए लोगों से आवश्यक उपाय करने की अपील की है। वहीं विभाग ने सभी अस्पतालों को शीतल कक्ष बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ORS पैकेट, IV फ्लूइड और जीवन रक्षक दवाएं रखी जाएं। इसके साथ ही चलंत चिकित्सा दल की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के 29 जिलों के 363 पैक्सों में पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध समिति के चयन के लिए कल मतदान होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के संयुक्त सचिव क्यूम अंसारी ने बताया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण 11 पैक्सों का चुनाव स्थगित किया गया है। संयुक्त सचिव ने कहा कि इस दौरान एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 797995127 है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति मतदान से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED ने कहा है कि राज्य में भूजल स्तर में गिरावट वाले स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पंचायत स्तर पर भूजल स्तर की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 30,000 जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी IoT डिवाइस से की जाएगी, जिससे समस्याओं का समाधान जल्द किया जा सके। सचिव ने बताया कि शिकायतों का त्वरित निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य में जीविका अधिकार केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। जीविका के अनुसार वर्तमान में 256 अधिकार केंद्र कार्यरत हैं। 165 नए केंद्र को शुरू किया जाएगा। इन अधिकार केंद्रों पर समूह की अनुशंसा के आधार पर 7 सदस्यों की तैनाती की जाएगी। राज्य सरकार ने सर्विस हिस्ट्री पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं करने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यालय पटना में उपस्थित होने का आदेश दिया है। विभाग के अनुसार इन अधिकारियों पर आदेश की अवहेलना और कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दोपहर 3:30 पर मुकाबला खेला जाएगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच शाम 7:30 पर आमने सामने होंगे। इधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज किंग्समीड स्टेडियम में 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला करेगी। यह मैच डरबन में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 शुरू होगा। मुंगेर जिले में खनन विभाग की टीम ने श्रीकृष्ण सेतु के पास खनिज पदार्थों के अवैध तरीके से ले जा रहे 6 ट्रक से 53 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। विभाग ने ट्रकों को जब्त कर कार्रवाई के लिए मुफस्सिल थाना को सौंप दिया। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत में करंट लगने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब दोनों अपने खेत में पानी पटा रहे थे। बक्सर जिले में उत्पाद विभाग ने वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 30 लाख रूपये मूल्य से अधिक की शराब जब्त की है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, महिलाओं को आरक्षण का हक दिलाकर रहेंगे। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, हम हारे नहीं हौसले बुलंद, पूरा करेंगे महिला आरक्षण का संकल्प। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली विभागीय बैठक पर लिखा है, हवाई अड्डों के पास एरो सिटी बनेगी, PPP मॉडल पर टाउनशिप। प्रभात खबर ने विशेष निगरानी इकाई की ओर से शहरी विकास और आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के आवास पर की छापेमारी पर लिखा है, आय से 1,10,00,000 से अधिक संपत्ति मिली, 7.5 लाख कैश बरामद। आज अखबार की सुर्खी है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंशवादी दलों का डर ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध का कारण है। कृषि विभाग ने राज्य में दलहन उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख टन से अधिक करने का निर्णय किया। राज्य के 29 जिलों के 363 पैक्सों में अध्यक्ष और प्रबंध समिति के चयन के लिए कल मतदान होगा। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के कई स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।